ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 9 से चालू करेंगे, 20 का 9, 20 अध्याय श्लोक 9 से। सुलभादि विप्र से यह निवृत्ता स्तनु त्यज न तथा तीर्थ आया ते श्रद्धया ये धन त्यज मनस्विन कारुणिक शोभनम जदर्थि कामोपनयन दुर्गति कुतः पुनर्ब्रह्म वेदां भवादृशाम् ततो वटोरस्य ददामि वांछितम् यजन्ति यज्ञा कतुभिर्जमादृता भवन्ति आम्नाय विधान कोविदा स एव विष्णुः वरदोऽस्तु वा मुद्वरो त्वा परो दास्याममुष्मै चितिवीप्सितां मने। यदपसर्वधर्मेण मां बह्नीयादनाकसम् तथापि अनन्न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं विपुं भीतं ब्रह्मतनुं विपुं। एष वा उत्तमश्लोको न जिहासति यद्यशः हत्वा मैनं हरेर्युद्धे संहिता निहतो जग्मया। श्रीशुक उवाच एवमश्रद्धितं शिष्यम् अनादेशकरं गुरुं अनादेशकरं गुरुः शशाप दैव प्रहितः सत्यसंधं मनस्विनां दृढं पण्डितमान्यज्ञः स्तब्धो अस्मदुपेक्षया मच्छासनाति गो मच्छासनाति गो जस्त्वं अचिराद भ्रस्य से श्रियः। एवं सप्तः स्वगुरुणा सत्यात्मना चलितो महान् वामनाय ददव्येन अर्चितो दुःखं पूर्वकम् विन्ध्यावलिस्तदागत्य पत्नी जालकमालिनी अनिने कलशं हेमं अवने जन्यपामृतं यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्यावहन् बुद्धिः तदपो विश्वपावनी। तदा सुरेन्द्रं दिवि देवतागणः गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारिणः तत्कर्म सर्वेऽपि गृणन्त आर्जवम् प्रसून वर्षैर्भविष्यन् मुदान्विताः मेदुर्मुहुर्दुन्दुभयसहस्रश गन्धर्व किं पुरुष किन्नरा जगुः मम स्नानेन कृतं सुदुष्करम् विद्वान् बाद्यद्रिपवे जगत्त्रयम्। तद्वामनं रूपं वर्धताद्भुतम् हरेर्मन्त्रस्य गुणत्रयात्मकम् मूर्खं दिशोद्यर्विवरा पयोभयः तिर्यङ्गदेवा ऋषयो जदाशत काये बलिष्ठस्य महाविभूते सः पिगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थ स जीवयुक्तं रसमचष्टाङ्गितलेऽथ पादयो मही महीयां महिध्यां पुरुषस्य जन्मयोः तत्त्वतृणोर्जानं विश्वमूर्तेः उर्वर्गणं मारुतमिन्द्रसेना सन्ध्यां विभोर्वाससि गृह्य यच्छति प्रजापतिं च जघने आत्ममुख्यान् नाभ्यां नभः नभः कुक्षिसप्तसिन्धुम् गुरुक्रमस्योरसिचर्क्षुमालां हृद्याङ्गधर्मं स्तनुर्मुरारे ऋतं च सत्यं च मनसथेन्द्रं श्रियं च वक्षसर्विन्दहस्तां कण्ठे च सामान्य समस्तरेफान् यहीं तक पढ़िए।
गीतं ब्रह्मतनुं नृपम् ठीक से देख कर पढ़िए क्या लिखा है।
गुणात्रयात्मकम्
विप्रर से पर रुकना है। सुलभा सुलभा युधि विप्रर से न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धन त्यज ये बड़ा श्लोक है। शोभनम पर विश्राम है। देख कर ठीक से पढ़िए। अब श्लोक बदल गया, छोटा बारह। यदा प्यसवधर्मेण, यद्यपि शब्द है, इसके बाद असौ संधि किया गया है, यद प्यसव, और इसके बाद अधर्मेण, यद्यपसव धर्मेण माम बधनीयात अनागसन तथा पीलम हिंसी से भीतम ब्रह्म तनु रिपोर्ट। ठीक है, पढ़िए बाद में। और ऐसा वा उत्तम श्लोक हो न जिहासति यद जस हत्वा मैनम हरि युद्धे सहिता निहतो मया। छूट गया श्री सुकल वाचन, सबसे छोट वो तो बोल दे ठीक हुआ। एवं अश्रद्धितम शिष्यम अनादेश करम गुरु गुरु। उसके बाद देखते रहे, पढ़िए। बड़ा श्लोक आ गया,
सुरेंद्रम भव विद्याधर सिद्ध चाला तत्कर्म सर्वे पिगणित आजुनि निदुर्नुर्दुर्नुभयासहस्रशो गंधर्व किं पुरुष किं राजगो मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करम् विद्वानदाद्यद्रिपवे जगत्त्रयम्
त्रियं निर्देवा विषयो जदा सत काये बलिष्ठस्य महाभूते
ददर्श विश्वं त्रिगुणात्मके भूतेन्द्रियाकाशय जीवयुक्तः
सुलभा सुलभ हैं जो भी युद्ध में विप्रव से हे ब्राह्मणों में शिरोमणि यही ही निश्चित और निविड़ता पीठ नहीं दिखाने वाले तनु तेजा युद्ध में शरीर छोड़ देने वाले बाण सह करके मर जाने वाले ये सुलभ है लेकिन न तथा लेकिन इस प्रकार से सुलभ वे लोग नहीं है जो योग्य पात्र के आने पर तीर्थ के आने पर श्रद्धा से धन का त्याग करें। दो तरह के लोग दुर्लभ हैं लेकिन उसमें भी सबसे दुर्लभ बता रहे हैं बड़े महाराज सुलभा युधि विप्र से यह निवृत्ता स्तनों से इस जगत में युद्ध में पीठ न दिखा करके अस्त्र का आघात सह करके शरीर त्यागने वाले बहुत हैं सुलभ हैं युद्ध में मर जाने वाले सुलभ हैं लेकिन योग्य पात्र के आने पर तीर्थ के आने पर श्रद्धा से दान देने वाले बहुत कम हैं। सबसे योग्य पात्र कौन है ब्राह्मण ब्राह्मण के आने पर वैष्णव के आने पर दान देने वाले श्रद्धा से बहुत कम लोग हैं और शरीर त्यागने वाले तो बहुत लोग हैं। शरीर को त्याग जैसे युद्ध में मर जाने वाले बहुत लोग हैं सुलभ हैं सुलभ है युद्ध युद्ध में विप्र से हे ब्राह्मण ऋषि हे ब्रह्मर्षि आप जानते हैं कि संसार में युद्ध का अवसर आने पर युद्ध में लड़ करके मर जाने वाले सुलभ हैं सब जगह सभी देश में सब जगह सुलभ हैं लेकिन न तथा लेकिन ऐसे सुलभ नहीं है जो तीर्थ के आने पर तीर्थ का अर्थ है ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण के आने योग्य पात्र के आने पर श्रद्धा से धन को त्यागें धन का दान करें ऐसे लोग सुलभ नहीं है। शरीर छोड़ देने वाले तो सुलभ हैं पर धन त्यागने वाले सुलभ नहीं। फिर बलि महाराज कह रहे हैं मनस्विन कारणकस्य शोभनम यदर्थ कामोपनयन दुर्गत यदि अर्थी के कामना को पूरा करने में कोई भिक्षुक आए और उसकी कामना को पूरा करने में यदि दाता की दुर्गति भी होती है उस दरिद्र हो जाता है पर फिर भी वह शोभा की बात है। दानी एक तो मनस्वी है धैर्य वाला है और कारुणिकस्य करुणा से भरा हुआ दया आ जाती है वो देता है तो धन सब दान करने के बाद यदि वह गरीब हो जाए निर्धन हो जाए तो यह उसके लिए शोभा की बात है। कुतः पुनः ब्रह्म विदाम भवा दिशा फिर आप जैसे परम विद्वान परम योग्य कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसके उसको देने पर क्यों नहीं सुना होगी? अतः निश्चित मैं ततो बटो रस दुदान मांझता हूँ। अस्य बटो हो, इस बटो की, इस विद्यार्थी की इच्छा को मैं पूरा करूँगा। इस ब्राह्मण की इच्छा है तीन पर भूमि लेने की, मैं दूंगा। वांछितम अस्य वांछितम ददामि, मैं दूंगा ही। फिर बाली महाराज कह रहे हैं, जजंति यज्ञ कर्तभिक जमा दूता भवंत आमना विधान को जाए। आप जैसे ब्राह्मण सभी भवंत आप लोग खुश हैं, यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो उन यज्ञों के द्वारा इन्हीं भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं ना, जो यहाँ बैठे हैं। जजंत यज्ञ कर्तभिर जमा देता है, यज्ञों के द्वारा और अनेक उत्सवों के द्वारा जिनकी उपासना आप लोग करते हैं आदर के साथ और बड़े विधि विधान से, यज्ञों में जो विधियां हैं सबका पालन करते हैं, बहुत नियम पालन करके जिनकी आराधना करते हैं, वही भगवान विष्णु स्वयं विष्णु यहाँ आए हैं। तो अब हमको वरदान दे अथवा हमारे शत्रु बन करके हमारे साथ द्रोह करें, कुछ भी करें, मैं इनको ददामी हम उसमें क्षति मिप्सिता, इनकी इच्छा के अनुसार भूमि दान करूंगा ही। हे मुने, आप मननशील हैं, आप विचार कीजिए, जिनकी उपासना आप लोग करते हैं बड़े बड़े यज्ञों से, पर कदाचित भगवान आते हैं, नहीं आते हैं, पर वही विष्णु यहाँ आए हैं और भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, तो मैं इनकी पूरी इच्छा पूरी करूँगा। भले हमारा शत्रु बन करके आए हैं, शत्रुओं का पक्ष लेकर आए हैं, असुरों के शत्रु हैं देवता, और देवताओं का पक्ष लेकर विष्णु आए हैं, जैसे भी आए ब्राह्मण के रूप में आए हैं, तो इनकी इच्छा को मैं पूरा करूँगा। ये जितना भूमि चाहते हैं, जितनी भूमि चाहते हैं उतनी दूंगा, और यदि तीसरा पैर रखने के लिए भूमि नहीं रहेगी, दो पग में सारा नाप लेंगे, इस अपराध के चलते मुझको यदि ये बांधेंगे, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन फिर भी यदि विष्णु हमको मारेंगे बांधेंगे, तो मैं कुछ भी प्रतिशोध नहीं करूँगा, इनसे लड़ूंगा नहीं। भगवान वहीं बैठे हैं, उनसे उसी के सामने बोल रहे हैं कि मैं इनके साथ लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं। भीतम ब्रह्म तनु रिपुण, हमारे शत्रु के पक्ष से आए हैं, लेकिन विष्णु स्वरूप में नहीं आए, ब्राह्मण के रूप में आए हैं, तो डर रहे हैं, तभी ना हमसे डर करके ब्राह्मण बन करके आए हैं, तो जो डर रहा है उससे क्या युद्ध करना है? ये भक्त का विनोद है भगवान से, हमारे भय से ब्राह्मण बन करके आए। यदि अपने स्वरूप में आ जाते तो यहाँ बहुत से असुर इनके साथ युद्ध करते, तो मेरे भय से ब्राह्मण बन करके आए हैं, अतः मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा, हमको चाहे बांधे या मारे कुछ भी करें, इनकी जो इच्छा हो। ये सब उत्तम श्लोक हो, वैसे ये उत्तम श्लोक है, इनका जस वेदों में गाया गया है, ये अपना जस छोड़ेंगे नहीं, ये सबसे बड़े वीर हैं और विश्व के ईश्वर हैं। तो अपना जस तो ये रखेंगे ही, हत्वा युद्धे हरे मैना एनाम माँ मने माम एनाम इस पृथ्वी को, युद्ध में मुझे मार करके ये पृथ्वी का हरण कर लें, अथवा मेरे द्वारा मारा जा करके ये सो जाए यही धरती पर, ये हमको मारे चाहे मैं इनको मारूं, ते उत्तम श्लोक है, इनकी वीरता बहुत प्रसिद्ध है, ये प्रेम की भाषा है, कह रहे हैं कि मैं इनको मारूं, पहले कह रहे मैं युद्ध नहीं करूँगा, या फिर कह रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे द्वारा ही मारे जाए तो सो जाएंगे, कहाँ सो जाएंगे, हृदय में सो जाएंगे, हमारे हृदय में सदा के लिए सो जाएंगे, निहत मेरे द्वारा मारे जा करके ये मेरे हृदय में बंदी बन जाएंगे। कहने का आशय है कि मैं इनको मार सकता हूँ, ये मुझसे हार करके मेरे वश में हो जाएंगे, या ये मुझको मार देंगे, हरा देंगे, दोनों हालत में मेरा कल्याण है। साफ गुरु से कह दिए, चाहे मुझको मारेंगे, ये मार सकते हैं, मेरी बात झूठ निकलेगी तो मेरा वध कर सकते हैं, अथवा हो सकता है कि युद्ध में मेरे द्वारा इनका वध हो जाए, मुझसे पराजित हो जाए, कह रहे हैं कि ब्राह्मण हैं मेरे पूज्य हैं, इनके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर कह रहे हैं कि हो सकता है मेरे द्वारा मारे जाए। भगवान के स्वभाव को बलि महाराज जानते हैं, ये भक्तों से हार जाते हैं, इसी से ऐसा बोल रहे हैं। इस पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं अश्रद्धितम शिष्यम, इस प्रकार से गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि ये मेरा शिष्य मुझ में श्रद्धा नहीं कर रहा है, अनादेश करण, ये मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो इसलिए वे क्रोधित हो गए और ससाप साप दिए। क्यों साप दिए? दैव प्रहित, भगवान कृष्ण ही उनके हृदय में बैठकर साप दिला रहे, गुरु जी क्रोध किए और साप दे दिए भगवत प्रेरणा से। दैव, दैव का अर्थ है भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा, भगवान हृदय में है, वे प्रेरित कर रहे थे, गुरु जी को क्रोध आया, बात नहीं माना, शिष्य अश्रद्धा दिखाया गुरु ने, इसलिए साथ दिए। सत्य संधम मनस्विनम, जबकि बलि महाराज सत्य प्रतिज्ञ थे, जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया भगवान को देने की, वो उसको पूरा कर रहे हैं, और उनके मन में धैर्य है, कोई घबराहट नहीं है, बड़े प्रेम से भगवान को देना चाहते हैं, ऐसे शिष्य को गुरु शुक्राचार्य जी श्राप दे रहे हैं। श्राप देते उन्होंने कहा, दृढ़म पंडित मानी, तुम अपनी बात पर अड़े हुए हो, अपने को बहुत बड़ा पंडित समझ रहे हो, पंडित मानी अज्ञा। अरे मूर्ख, मैं वेद के श्लोकों से तुमको बात बता रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हो, अज्ञा। पर वो मूर्ख अस्तब्ध हो और तुम बिल्कुल सूखे वृक्ष की तरह हो, तुम झुकना नहीं जानते हो, तुम झुक नहीं रहे, तुम्हें विनय नहीं है, अस्मद उपेक्षा, मेरी उपेक्षा करने से, मेरे शासन का अतिक्रमण करने से तुम तुरंत धन संपत्ति से हीन हो जाओ, इस साथ की मेरी बात नहीं मानते हो, मेरे शासन की अवज्ञा करते हो, तुम्हें श्रद्धा नहीं है, उदंड हो, इस कारण से तुम धन से हीन हो जाओ और वो भी तुरंत। इसके बाद भी बलि महाराज ये नहीं कहे कि गुरुजी क्षमा कीजिए, जो होगा होगा, भगवान को तो देना ही है, वे दृढ़ थे। एवं सप्तः स्वगुरुणा, अपने गुरु के द्वारा साप दिया गया बलि महाराज को, पर फिर भी वे सत्य से डिगे नहीं, सत्या न चलता, सत्य से हटे नहीं, जो कह दिए किए ही, क्योंकि महान बलि महाराज महान पुरुष हैं। ये सुखदेव गोस्वामी उनके विशेषण को बता रहे हैं, महान बलि अपने गुरु से भी बड़े हैं, महान हैं और समस्त भक्तों में सिरमौर हैं। ये दो भक्त असुर कुल में अद्भुत हुए, एक प्रह्लाद महाराज और बलि महाराज। असुर कुल में वृत्रासुर भी हुए, बहुत बड़े पुरुष। तो इन महान असुर भक्तों में बलि महाराज महान हैं, श्रेष्ठ हैं। गुरु के साथ देने पर भी वे नहीं झुके। यदि दूसरा कोई व्यक्ति रहे तो इस तेजस्वी ब्राह्मण के सामने झुक जाता है कि ठीक है गुरु जी, हमसे गलती हो गई, आप कहते हैं तो कुछ है, जमीन बचा लूँगा और इतना ही दान दूंगा। लेकिन बलि ने ऐसा नहीं कहा, गुरु चाहे कुछ भी बड़बड़ करे, चाहे पैजामा से बाहर हो जाए, लेकिन बलि अपने निश्चय पर ही रहे, जो कह दिया तो करूँगा ही। जब ये बातें हो रही थी और बलि महाराज बामन देव के हाथ में जल दिए, क्योंकि दान देते समय दान देने वाला और लेने वाला दोनों संकल्प करते हैं। लेने वाला संकल्प करता है कि मैं ले रहा हूँ, तो उसके हाथ में भी जल होता है और दाता के भी हाथ में। तो बलि महाराज अपने हाथ में जल लिए और बामन देव के हाथ में जल दिए, संकल्प कर दिए। तो ये सारे दृश्य को उनकी पत्नी भी देख रही थी। वो यदि गुरु से परोक्ष में थी, घर के भीतर, लेकिन वो देख रही थी, बातें सुन रही थी। वो भी बलि जैसा महान स्त्री थी, तो तुरंत निकल करके सामने आए भगवान के पास। उसका नाम विंध्यावली था, विंध्यावली। तो बाहर आ गए, इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं आगत्य, विंध्यावली सदा आगत्य। उस समय आ करके वो क्या गहना पहनी थी सुखदेव जी ये भी बता रहे हैं। जालक माल में, जालक कहते हैं मोती को, वो मोतियों की माला लगाई थी। और हाथ में सोने के कलश में पानी लेकर के आई, भगवान का चरण धोने के लिए जल लाई थी। अभी कितना पतिव्रता स्त्री है, पति की इच्छा में इच्छा मिला दी थी। पति यदि चाहते हैं दान देना तो वो भी तैयार है। ऐसा नहीं कि आजकल की पत्नी जैसे हाहाकार करने लगी, ये सब लुटा देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तुम अपना करो, हम इसको बांट दो हमें पहले। स्त्रियों को चिंता होती है ना, लेकिन विंध्यावली बलि महाराज की पत्नी थी, उसको आनंद हुआ कि ये सब दे रहे हैं। वो भगवान का चरण धोने के लिए पानी लाई। अवनेजनी कहते हैं उसको, अवनेजनी अपाम, चरण धोने के लिए जल लाई सोने के घड़े में भर करके। तो श्री बलि महाराज भगवान के दोनों चरणों को धोए श्रीमद् पाद जुगम, मुदा परम आनंद से चरण को धोने लगे। उनकी पत्नी पानी गिरा रही थी दोनों हाथ से, घड़े से, और धो रहे थे चरण बलि महाराज। ये मर्यादा है, वो अपने गुरु के चरण को छू नहीं सकती थी, तो जल गिरा रही थी और बलि महाराज धो रहे थे। अवन निज्या वहन मुर्मी, और चरण धो करके उस पानी को अपने सिर पर रख, जिस जल को भगवान शंकर अपने जटा में धारण करते। असुर वंश में होते हुए भी बलि महाराज को भगवान का चरण जल मिल गया। चूंकि वे प्रहलाद महाराज के वंश में जन्म लिए थे, इस कारण से भगवान का चरण कमल का जल मिल गया। वहन मूर्धनि, जो अपने सिर पर वहन कर किए थे, उनके केस सब भींग गए और चरण धोवन को लेकर के घूम रहे थे यज्ञ मंडप में, और सभी भूमि में यज्ञ में सबके ऊपर उन्होंने भगवान का चरण धोवन छिड़का। वो जल विश्व पावनी गंगा जी है, सारे संसार को पवित्र करता है वो जल। बलि महाराज अपने यज्ञ में पधारे हुए सभी सदस्यों को चरण धोवन दिए। जब ये भगवान के चरण को धो रहे थे, उस समय देवता लोग दुदुम्भियाँ बजाने लगे, हजारों दुदुम्भियाँ, सब जगह बहुत उत्सव होने लगा। देवता असुरेंद्र की प्रशंसा करने लगे, असुर शिरोमणि बलि महाराज की प्रशंसा करने लगे। तदा सुरेंद्रम दिवि देवता गणा, देवता गणा देवताओं का समाज जुट गया वहाँ जग मंडप के ऊपर आकाश में, और सभी लाखों फूल बरसाने लगे बलि महाराज के ऊपर और कहने लगे, तत्कर्म सर्वे गिणंत आर्यवं, बलि महाराज की प्रशंसा कर रहे थे। भगवान वहीं पर हैं लेकिन भगवान के जस के समान बलि के जस की प्रशंसा करने लगे, बल्कि ज़्यादा भगवान के बारे में वो लोग कम बोल रहे थे। सभी देवता यही कह रहे थे कि ओहो ये देखिए इनकी सच्चाई, ये असुर कुल में होकर के भी इतना ईमानदार, इतना ब्राह्मण का भक्त, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, और भगवान पर बल्कि वे आक्षेप कर रहे थे कि ये भगवान तो छल कर रहे हैं, आए कपटी ब्राह्मण बन करके बात बना करके दान ले लिए, लेकिन बलि कोई भी कपट नहीं किए। इनका आर्जवम, आर्जवम का अर्थ है सरलता, इनके सरलता को गा रहे थे देवता लोग, गिणंत आर्जवम, आर्जवम सरलता का बखान करते हुए सभी देवता फूल बरसा रहे थे। जबकि देवता शत्रु हैं असुरों के, पर वे असुरेंद्र की प्रशंसा कर रहे थे, इस कर्म की प्रशंसा कर रहे थे, बलि महाराज ने जो दान दिया है, जानते हुए भी कि ये शत्रु के पक्ष से आए हैं, इंद्र को दे देंगे राज्य, यह जानते हुए भी बलि महाराज ने दान दे दिया है। तो वहाँ गंधर्व जुट गए, किन्नर किम पुरुष सभी देवता, देवताओं में एक जाति है किम पुरुष, किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी रहते हैं, सभी किम पुरुषों के राजा हैं वे, जिसको देखने के बाद एक बार प्रश्न उठ जाता है कि क्या यह पुरुष है, तो उसको किम पुरुष कहते हैं, किम नर, क्या यह नर है। तो श्री हनुमान जी को देख करके यही नहीं सोचना चाहिए कि बानर है, किम पुरुष हैं, पुरुष हैं, बहुत बड़े देवता हैं, भगवान राम की उपासना में रहते हैं, तो किम पुरुष जो भी देवता हैं ये सब आ गए, किन्नर लोग आ गए, गंधर्व आ गए, और हजारों दुदुभियाँ बज रहे थे, लाखों मृदंग बज रहे थे, सहनाई बज रही थी, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, देवताओं के लिए ये बहुत आनंद का समय था, क्योंकि राज्य उनके लिए ही भगवान मांग रहे हैं, वे अपनी माता के व्रत से प्रसन्न थे, पयोव्रत से राज लेकर के अपने भाई को देंगे, इंद्र को देंगे, तो ये देवताओं के लिए बहुत खुशी की बात थी, इसीलिए सब नाच गा रहे थे। तत्कर्म सर्वे गिणंत आर्जवम, सर्वे पी सभी लोग भी, कोई बाकी नहीं रहा, देवताओं में सब लोग, उनकी पत्नियां, अप्सराएं वे भी गा रही थी, नाच रही थी, और सभी देवता नाच गा रहे थे, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, हजारों दुमदुमियाँ बज रही थी, बिगुल बज रहे थे, हजारों मृदंग बज रहे थे, सब लोग यही कह रहे थे मनस्विनाने न कृतम सुदुष्करम। इस महान पुरुष ने दुष्कर कर्म किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जानते हुए भी विद्वान, विद्वान मतलब जानते हुए, जानते हुए भी अदात दे दिया जब तद्विपवे जगत त्रयम, शत्रु को दे दिया। जानते हुए भी भगवान का कपट, जानते हुए भी गुरु ने बताया, फिर भी ये दे दिया। तीनों जगत धन्य है पुरुष, सभी देवता धन्यवाद दे रहे थे, बोल रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। तब भगवान को दान मिल गया, तब इसके बाद वे अपने आसन से खड़े हुए और अब नापना चालू करेंगे सारे विश्व ब्रह्मांड को, केवल पृथ्वी को नहीं, केवल स्वर्ग को नहीं, सारे ब्रह्मांड को। इसलिए भगवान का वह रूप, वामन रूप, बड़ा सुंदर एक बच्चे के रूप में था, वो एकाएक बढ़ने लगा। तद वामनम रूपम अवर्धत अद्भुतम, वो अद्भुत रूप बढ़ने लगा बहुत जल्द, जैसे बाण छोड़ा जाए तेज गति से बढ़ने लगता है, तो ऐसे भगवान का वो शरीर बढ़ने लगा। और बलि देख रहे थे बढ़ने लगा, केवल लंबाई नहीं, उसी तरह से मोटाई, शरीर भी चौड़ा होने लगा, ऊंचा होने लगा, बहुत विशाल बढ़ गया। तद वामनम रूपम अवर्धत अद्भुतम, बढ़ने लगा। हरे अनंत से गुण त्रयात्मक, भगवान अनंत हैं, तो उनका वह रूप है जो पहले वामन रूप में था वो बढ़ने लगा। गुण त्रयात्मक, तीनों गुणों से बना हुआ सारा जगत उनके शरीर में ही आ गया। बढ़ते बढ़ते जितना भी संसार है, ब्रह्मांड है, सब उनके ही शरीर में आ गए, दिखने लगा। बलि ने देखा, ये प्रश्न होता है कि भगवान सारे जगत को अपने भीतर क्यों दिखा रहे हैं? इसका उत्तर ये है कि भगवान बलि के अभिमान को तोड़ना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि मैं तुमसे ले नहीं रहा हूँ, मेरी ही वस्तु को तुम दे रहे हो, ये सारा जगत मुझ में है। वास्तव में संसार में कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता है, यदि कुछ दे रहा है तो वो भगवान की ही चीज को दे रहा है, कोई किसी वस्तु को बना नहीं सकता। सारे संसार में जितनी संपत्ति है, जितनी भूमि है, जो भी जल है या तेज है, सब कुछ भगवान के अंदर है। तो बलि को ये पता चल जाए कि ये भगवान अपनी ही वस्तु को लिए, कोई दूसरे की वस्तु नहीं लिए, तो बढ़ने लगा। ये अद्भुत बात है, छोटा सा बच्चा बढ़ने लगा जिसके भीतर सारा विश्व दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई जा रहा था? भू या पृथ्वी, खम आकाश, और आकाश में स्थित सारे लोक, भू खम दिशो और दिशाएं, दसों दिशाएं, सब दसों दिशा में जो कुछ भी है वो सब भगवान के शरीर में दिखने लगा। देव और विवरा, देव का अर्थ है स्वर्ग, आकाश में रहने वाला, बीबर समुद्र बीबर बड़े बड़े पाताल लोक आदि में जो बीबर हैं पयोधर सारे समुद्र सभी समुद्र भगवान के देह में दिखने लगे और त्रियंग निर्देवा पशु पक्षी सब भगवान के देह में मनुष्य और देवता सभी दिख रहे थे ऋषयो जदास पर और ऋषि जन भी सभी ब्राह्मण ऋषि मुनि तपस्वी सब उनके भीतर ही दिख रहे थे जद आस पर जस्मिन आस पर जिस शरीर में थे भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान तो अभी जब लीला कर रहे थे गोकुल में बिल्कुल छोटे बच्चे थे तो एक दिन ये माटी खा लिए। बच्चों ने शिकायत किया जसोदा से, माँ ये मिट्टी खाया है। उसमें बलराम जी भी थे और माँ जसोदा हाथ पकड़ करके कृष्ण को डांटने लगे क्यों मिट्टी खाया। उसको ये भय था कि ये मिट्टी खाएगा इसके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे बीमार हो जाएगा, इसीलिए वो बहुत डरती थी। बहुत क्रोध हुआ, पूछने लगी क्यों तूने मिट्टी खाया। तो कृष्ण ने सहज कह दिया नहीं मैं नहीं खाया। तो ये बलराम भी बोल रहा है, मधुमंगल बोल रहा है, सुबल बोल रहा है, सभी कह रहे हैं तुमने खाया है। तो भगवान ने सीधे कह दिया नहीं खाया है और हंस रहे थे। हंस रहे थे इसलिए कि उनकी बात झूठी हो जाए उन लोगों को। तो माता यशोदा ने कहा सब झूठ बोल रहे हैं, तुम भी एक सत्यवादी हो गए हो। अगर ऐसी बात है तुम नहीं खाए हो तो मुंह खोलो, देखना चाहते हो तुम्हारे मुख में। तो भगवान अपना कमल के समान सुंदर मुख खोले खोले तो माँ जसोदा उसी में सारा ब्रह्मंडल देखती है और सारा स्वर्ग पृथ्वी मनुष्य गाय पशु जो भी हैं सबको माँ जसोदा देखती है। कृष्ण के छोटे से मुख में सारा ब्रह्मांड, आप लोगों ने देखा होगा एक ब्रह्मांड घाट है जमुना जी किनारे जहाँ भगवान ने लीला किया, सारा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में। तो भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं, विचित्र बात नहीं, कुछ भी दिखा सकते हैं क्योंकि सब कुछ उनके भीतर है। इसी तरह घटना हुई जब भगवान कुरुक्षेत्र में थे, अर्जुन के मन में इच्छा हो गई कि मैं विश्वरूप का दर्शन करूं, तो भगवान वहीं दिखा दिए, सारा विश्व उनके भीतर था। महाभारत के युद्ध में जो भी वीर मरे थे मरने वाले थे उसको भगवान ने दिखा दिया। तो यहाँ एक बच्चा के रूप में वे आए हैं और अब त्रिविक्रम बन गए, सारा विश्व भगवान के शरीर के भीतर। काये बलिस्तस्य महाविभूते, काये काया में शरीर में बलि महाराज ने देखा, महाविभूते तस्य समस्त धन ऐश्वर्य के स्वामी भगवान के शरीर में उन्होंने देखा। सह ऋत्विक, उस यज्ञ में जो भी ऋत्विक थे जो आचार्य थे, यहाँ तक श्री शुक्राचार्य भी, ये सब भगवान के शरीर में ही थे। अपने को भी देखे और इन सब सदस्यों को जग कराने वाले ऋतुजों को ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मक भगवान के उस शरीर में देखे और त्रिगुणात्मक ये विश्व है तो भगवान का वह रूप त्रिगुणात्मक हो गया है। तो तीन गुणों से रचा हुआ सारा विश्व उसमें था। भूतेन्द्रिय अर्था से जीव जुक्तम सारे जीव और पंच महाभूत और पंच महाभूतों की मात्रा स्पर्श शब्द रूप रस गंध और सारी इंद्रियां अंतःकरण आदि सब और समस्त जीव कोई बाकी नहीं थे, सभी भगवान के शरीर में दिख रहे थे। बलि महाराज ने देखा ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मक भूतेन्द्रिया था सजीव युक्तम। अब और ध्यान से देख रहे हैं भगवान के किस अंग में कौन लोग देखे, सब बात बता रहे हैं सुखदेव जी। रसाम अचस्ट अंग ही तले थक भगवान के चरण के नीचे तलवे में देखे, वो तो बहुत ऊंचा शरीर था तो तलवे में देखने लगे तो रसाम वे नीचे के सारे लोगों को देखे पाताल को भगवान के चरणों में तलवे में वे पाताल को देखे और दोनों पैर पादयो चरण तल से ऊपर चरण में पृथ्वी को देखे। और उरुक्रम भगवान के जंघयो जंघयो कहते हैं पेंडली पिंडली चरण से ऊपर और जानू से नीचे के भाग को पिंडली कहते हैं। तो उन्होंने देखा पैर में देखा पृथ्वी को और पेंडली में देखा पर्वतों को महिध्यान पतत्रो जानुनी विश्वमूर्त विश्वरूप भगवान के जानू में घुटने में बलि महाराज ने सारे पक्षियों को देखा, जो भी पक्षी थे सब भगवान के घुटने में और उनके उरु में। उरु कहते हैं जांघ के उछले भाग को, नीचे जानू कहते हैं लेकिन ऊपरी भाग को उरु कहते हैं। तो बलि महाराज ने भगवान के उरु में देखा मारुतम मारुत गण सब प्रकार की हवाओं को देखा, मरुद गणों को देखा सब प्रकार की हवा जान में थी। बलि महाराज को सुखदेव जी इंद्रसेन कह रहे हैं, इंद्र की सेना के समान जिनकी सेना थी वे हैं इंद्रसेन। उन्होंने देखा भगवान के वस्त्र को जो पहने थे पीताम्बर, बहुत बड़ा शरीर था ना, सारा लोक तीनों लोक जिसमें अट गया है कितना बड़ा। तो कपड़ा भी बहुत लंबा होगा, तो भगवान बलि महाराज भगवान के वस्त्र में तीनों संध्याओं को देखे, शाम सुबह दोपहर शाम संध्याओं को देखे वस्त्र में। गुहिये प्रजापति और भगवान के गुही अंग में उन्होंने देखा सारे प्रजापतियों को, ब्रह्मा समेत जितने भी प्रजापति हैं जो प्रजा को उत्पन्न करने वाले पालन करने वाले, उन सब प्रजापतियों को भगवान के गुप्त अंग में देखा बलि महाराज। और भगवान के जांघ में उन्होंने ध्यान से देखा सारे असुर थे, असुरों में प्रधान बलि महाराज ने अपने को भी देखा भगवान के जांघ में निचले भाग में, सभी असुर थे। स्वयं जिसमें प्रधान थे बलि, ऐसे असुरों को भगवान के जांघ में देख नाभ्या नभ और भगवान के नाभि में देखे संपूर्ण आकाश को, और कुक्षिसुर और भगवान के कुक्षी में कोख में देखे सातों समुद्र को, कुक्षिसुर सप्त सिंह रू क्रमश्वर चर्च में, और भगवान के पूर में हृदय में उन्होंने देखा तारा मंडल को, सारे लोक तारे जो हैं बड़े बड़े लोक हैं सबको देखा। हृदयंग धर्मम स्तनयर मुरारे, और श्री मुरारी के सामने तो उनके छाती में हे परीक्षित, मुरारी के हृदय में बलि महाराज ने धर्म को देखा, उनके दोनों स्तनों में यथार्थ वाणी और सत्य को देखा, ऋतम च सत्यम च मनस्थम, और भगवान के मन में उन्होंने चंद्रमा को देखा, मनसी अथवा इंदु चंद्रमा को देखा भगवान के मन में। श्री भगवान के पीठ में उन्होंने देखा कि अधर्म है, पीठ में मतलब भगवान से विमुख, जहाँ अधर्म है वो तो भगवान वहाँ नहीं रहते, अधर्म भी दिखाई पड़ा वो भगवान के पीठ में मतलब विमुख सामने में। और बलि महाराज ने भगवान के वक्षस्थल को देखा, उनके छाती पर श्री जी थी लक्ष्मी जी, वक्षसी अरविंद हस्तम जो हाथ में कमल ली हुई थी, ऐसी लक्ष्मी जी दिखाई पड़ी भगवान के वक्षस्थल में, और उनके कंठ में सारे अक्षर दिखाई दिए। रेप रेप का अर्थ अक्षर शब्द, सब प्रकार की बोली भगवान जानते हैं, सब शब्द जानते हैं, तो सारे रेप उनके कंठ में दिखाई दिए। इंद्र प्रधान अमरान भजेश, और इंद्र प्रधान सारे देवता भगवान की भुजाओं में थे। तत्कर्णयो ककुभव, और भगवान के कानों में सारी दिशाएं थी। द्यौश्च बुद्धि, और स्वर्ग उनके सिर में था, सिर में स्वर्ग था, केशों में बादल थे, मेघा केश सुमेघा सुष्म नसिका, उनकी नासिका में नाक में वायु था, और अक्षों से सूजन बदने चलती, और उनके दोनों आँखों में सूर्य थे, और बदन में मुख में अग्नि देव, वाण्याम तो छंदांसी रसे जले से, और वाणी में सारे वेद मंत्र थे, सारे छंद उनके वाणी में थे, रसनम जले से, और रसे जेवा में जलेश थे वरुण देव, और उनकी दोनों भावों में निषेध और विधि थी। विधि का अर्थ है जो करना चाहिए, और निषेध का अर्थ है जो नहीं करना चाहिए। भगवान भावों में यही दिखा रहे, उनकी पलकों में रात्रि और दिन था, अर्थात जब वे पलक मुनते थे तब रात होती थी, और जब पलक उठा लेते थे तब दिन होता था। भगवान का साधारण तरीके से देखना, और जब देखते हैं तब दिन होता है, सब लोग काम करते हैं, और जब बंद करते हैं तो रात हो जाती। पलक का गिराना ही रात है, और उठाना ही दिन है, यह देखा। अहस्तरात्रि परस पुंच मंदिर ललाटे अभिमान, भगवान के ललाट में क्रोध को देखा। क्रोध है दोनों भावों के बीच में रहता है, और भगवान के निचले ओठ पर बलि महाराज ने लोभ को देखा, साक्षात लोभ। उनके स्पर्श से काम वासना उत्पन्न होती है, स्पर्श से काम। उनके वीर्य में उन्होंने देखा जल की स्थिति, सारा जल उत्पन्न हुआ है भगवान के वीरता से। पृष्ठे तो धर्म पीठ में अधर्म है, और कर्णेश यज्ञ उनके क्रमण में चाल में यज्ञ है, एक एक कदम पर सारे यज्ञ विद्यमान है। क्रमण का अर्थ है क्रम रखना, पर पैर का क्रम। छाया सुंदर तुम हंसते चमाया, भगवान की छाया में मृत्यु को देखा उन्होंने और भगवान की हंसी में माया को। तम और भगवान के रोमों में अंग रू है, उनके शरीर के रोमों में बड़े महाराज ने सब प्रकार के औषधि देखा, गेहूँ चावल जो भी फसल है सब भगवान के शरीर के रोए से हुआ है। सारी नदियाँ भगवान के नाड़ियों में हैं ये देखा बलि ने, और भगवान के नखों में सारे पत्थर हैं शिला नखे से। बुद्धव अजम देवगणान सिंह चा, और बलि महाराज ने तो देखा कि भगवान की बुद्धि में ब्रह्मा जी हैं और सारे ऋषि देवता सब। भगवान के त्वग इंद्रिय में सारे चर अचर जीव हैं, सर्वाणि भूतानि ददर्श वीर वीर बड़े महाराज सारे जीवों को देखे भगवान ने। सर्वात्मनिदम भुवनम निरीक्ष, इन सारे भुवनों को ब्रह्मांड को भगवान ने देख करके सभी असुर जो वहाँ जुटे थे वो बड़े विषाद में पड़ गए। असुरों का स्वभाव ही बड़े विषाद में पड़ गया, विशेष करके जब उन्होंने सुदर्शन चक्र को देखा। बलि महाराज विषाद में नहीं पड़े और असुर सब विषाद में पड़े जब उन्होंने देखा सुदर्शन चक्र जिसका असह्य तेज है और सारंग धनुष जिसमें से टंकार की आवाज वज्रपात के समान सुनाई पड़ती थी। भगवान के सभी अस्त्र का नाम है, उनके चक्र का नाम है सुदर्शन, उनके धनुष का नाम है सारंग, उनकी गदा का नाम है कौमुदकी और तलवार का नाम है विद्याधर, उनके शंख का नाम पांचजन्य है। तो जब असुरों ने देखा ये तो सभी अस्त्र शस्त्र से सजा हुआ है, पहले ब्राह्मण के रूप में आया और यह विष्णु हो गया, तो सभी बड़े घबराए और मारने के लिए वामन देव को टूट पड़े चले, यही असुरों का विचार है। और बहुत बड़ी फिलॉसफी बोल बोल करके वामन देव को मारने चले। भगवान के हाथों में कौमुद की गदा थी, विद्याधर तलवार था, अक्षय बाण वाले सब तर्कश थे, बहुत से बाण भी थे। तो जब भगवान उस रूप में प्रकट हुए तो उनके सभी पार्षद भी जो वैकुंठ में रहते हैं, उनमें सुनंद मुख्य हैं, वे सब भगवान की स्तुति कर रहे थे। सभी लोकपाल जय जयकार कर रहे थे। भगवान के उस विशाल शरीर पर, मस्तक पर बहुत सुंदर मुकुट था, स्फुरत कीटांगदमी में कुंडल और कानों में कुंडल झूला झूल रहा था, जो मकराकृत कुंडल था, मछली के आकार का कुंडल। और उनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था, जहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं। और बहुत ज़्यादा कीमत का रत्न था, कौस्तुभ मणि, वो बहुत चमक रहा था। एक बार प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान इतना महंगा गहना क्यों पहनते? तो प्रभुपाद ने कहा, क्या चाहते हो कि ईश्वर कंगाल हो जाए? ये सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं, पहनते हैं, सुस्वाभाविक है। तो सबसे बड़ा गहना है कौस्तुभ मणि, उसके आगे सोना हीरा सब बिल्कुल राख जैसे बेकार है, वो बहुत कीमती है। और भगवान को उनके ससुर ने दिया था, लक्ष्मी जी जब विवाहित हुई भगवान के साथ, तब समुद्र से वो कौस्तुभ मणि मिला। जब समुद्र का मंथन हुआ था, भगवान बहुत धनी हैं ही, जो उनकी इच्छा हो पहने। और भक्त लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं तो भगवान को आभूषण धारण कराते ही हैं, कई प्रकार के बेढंगा प्रश्न लोग किया करते हैं। भगवान नरसिंह देव को देख करके किसी व्यक्ति ने पूछा, भगवान हिंदुओं के बहुत कठोर हैं, बाप रे बाप, आंत निकाल दिए उसका, पाने विकराल रूप बनाए। तो भगवान जब चाहें जैसा रूप बना सकते हैं, वे सबसे बड़े बलवान हैं, सबसे धनवान हैं। भगवान कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है कि आए यहाँ इस जगत में धर्म का प्रचार करने और उन्हीं को कोई सूली पर चढ़ा दे, तो वो ऐसे कमजोर भगवान नहीं है। अब जब भगवान को ही मार दिया जा सकता है तो संसार का क्या होगा, जरा सोचिए। तो ये भगवान का लक्षण नहीं है कि आए कहने के लिए कि भजन करो और कोई छाया आतंकवादी सूली पर चढ़ा दिया। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को कुछ यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया, वो कोई गलत नहीं बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, पर यहूदियों को जो ईसाई ही थे वो बात पसंद नहीं आई और रंज होकर के वे लोग फांसी पर चढ़ा दिए। तो क्या भगवान ऐसा होता है कि कोई आतंकवादी मार दे, कोई फांसी पर चढ़ा दे? भगवान ऐसा है जो सबको मार सकता है, सबको जिला सकता है, सबको भोजन दे रहा है। जब भगवान यहाँ आए तो कोई किसी से प्रार्थना नहीं किए कि सब ठीक हो जाओ। जो विरोधी था, जो दुष्कर्मी था, उसको मार दिया भगवान। इसलिए जब 6 दिन के थे उसी दिन से मारना चालू किए। पुतना को मारा उन्होंने, तो बहुत कपटी थी, उसको जानना कठिन था, लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं, वे जान गए कि ये भेष बना करके आई है माँ का, लेकिन यह राक्षसी है। तो भगवान ने उसको दूध पी करके ही मार दिया, कोई हाथ से तमाचा नहीं मारा, कोई चक्र नहीं चलाया। जब दूध पिलाने आई थी तो उसके अस्तनों को पीने लगे, जब पीने में ही मर गई तो भगवान क्या करे। तो भगवान इतने अद्भुत हैं, किसी भी तरह से मार सकते हैं और किसी भी तरह से जिला सकते हैं, सबका पालन कर रहे हैं, सबसे बड़े ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं और धनवान हैं। तो भगवान पहनेंगे नहीं तो क्या कंगाल जैसे रहेंगे? भगवान तो बलवान हैं ही। जो कहते हैं कि मैं आता हूँ धर्म का प्रचार करने, धर्म संस्थापनार्थ है संभवान जुगे जुगे, तो भगवान आ करके भीख नहीं मांगते हैं कि तुम धर्म का पालन करो नहीं तो तुमको नरक में पटक दूंगा। ये कहते हैं लेकिन कभी भीख नहीं मांगी। भीख मांगते हैं केवल नाम जप के लिए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो मांग रहे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुम गौरांग बोलो, गौरांग कहो और मुझे खरीद दो। भगवान की जो परिभाषा है हमारे वैदिक ग्रंथों में वह पूर्ण परफेक्ट है। भगवान का स्वरूप है परम सुंदर है, परम बलवान है, परम ज्ञानी है, परम धनवान है। उनकी पत्नी ही सारे जगत में सबको भोजन देती है, लक्ष्मी जी। सभी जो खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, भगवान की प्रिया की कृपा है। इतने धनी स्त्री से भगवान ने विवाह किया, लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष से ही सारा जगत जी रहा है। ये सबसे धनी है, सबसे बलवान है, सर्वज्ञ हैं, सबसे बड़े ज्ञानी। तो भगवान उसी तरह से कपड़ा पहनते हैं और वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। कोई यहाँ आए हैं वामन देव के रूप में भीख मांगने, तो उन्होंने दिखा दिया कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ हमारे शरीर में है। बलि हक्का बक्का हो गए देह करके, बहुत प्रसन्न थे कि भगवान ने अपनी वस्तुएं सब ले लिया। लेकिन ये भगवान दिखाना चाहते थे कि हम जो ले लिए किसी दूसरे की वस्तु नहीं लिए, हमने सब पैदा किया है, हम अपनी वस्तु ले लिए। जैसे गंगा जी का भक्त गंगा में स्नान करने जाता है तो स्नान के बाद वो गंगा जी की पूजा करता है। पूजा में अगरबत्ती चाहिए, फूल चाहिए और इसके साथ कुछ पानी भी चाहिए, तो पानी कहीं अलग से नहीं लाता है, गंगा जी में से ही पानी ले लेता है और फिर गंगा जी को अर्पित करता है। तो गंगा जी उसको मान लेती हैं कि ये मेरा भक्त है। और वो भी समझता है कि मैं भक्ति किया, मैं पूजा किया, तो गंगा जी का पानी गंगा जी को दे देते हैं। ऐसे भगवान की वस्तु सब है संसार में, भगवान की वस्तु को ही भगवान को देना है, ये भक्ति है। हमारा कुछ नहीं है यहाँ, कोई भी वस्तु भगवान की है, भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में लौटाना यही भक्ति है। हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, जो कुछ भी है सब भगवान से मिला है, तो बुद्धि को लगाना चाहिए, बुद्धि से भगवान के प्रचार की योजना बनानी चाहिए, मन से भगवान का चिंतन करना चाहिए। मई एवं मन आधत्स्य, मई बुद्धि निवेश। भगवान कहते हैं मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ, तो इस जीवन के बाद तुम मुझ में ही रहोगे। इस तरह हमें भक्ति करनी है। भगवान ने सारा उपाय बता दिया है अपने प्रवचन में, जिसको भगवद गीता कहते हैं। तो जब बलि महाराज से भगवान ने दान दे लिया, तब सारे असुर बहुत उदास हुए और ये लोग आपस में कहने लगे, ये अरे ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, ये हम लोगों का शत्रु, मतलब दैत्यों का शत्रु, ये विष्णु है, देखा कितना चलाक है, छोटा सा शरीर दिखाया और हम नापना हुआ तो ये इतना बड़ा हो गया साल, इसलिए हमारा धर्म है इसको मार देना, इसकी जान मार दो, ये हमारा धर्म है। साफ कहे सब लोग, ये हमारा धर्म है अपने स्वामी की सेवा करना। स्वामी कौन? बलि महाराज। बलि महाराज की सेवा हम लोग करें, और सेवा क्या होगी कि उनके इष्ट देव को हम लोग मार दें, यही असुरों का विचार है। असुर असुर ही होते हैं। अब धर्म लगे सिखाने आपस में, हमारा धर्म है ये बामन को मार देना, जबकि बलि महाराज पूजा किए, अपना सर्वस्व अर्पित किए भगवान को, और उनके अनुयायी उनके चेला लोग कह रहे हैं कि इसको मारो, और कहीं नहीं रहते, हाथ में हथियार लेकर के आ गए सामने कि मारेंगे। उसी समय भगवान के पार्षद श्री गरुड़ जी और अभी पार्षद जिनका नाम है सुनंद नंद पुष्पदंत जय विजय, सभी पार्षद आ गए और इन लोग लगे मारने असुरों की सेना को, बड़े बड़े घातक हथियार लिए थे, मारने लगे, देर नहीं किए, तुरंत मारना चालू किए, सौ असुरों को मारने लगे, तो उसमें से कुछ असुर तो भाग गए, कुछ मर गए। राक्षस मारने से ही ठीक रहते हैं, तो भगवान के पार्षदों ने मारा, अगर नहीं मारते तो बामन देव को मारने लगते। तब बलि महाराज रोक के अपने लोगों को कहे, अब बंद करो युद्ध, बलि से पहले कुछ पूछे नहीं और भगवान को मारने की सोचने लगे, तो भगवान के पार्षदों ने उनको ही समाप्त कर दिया। तो जो बचे थे, बलि महाराज ने कहा तुम लोग युद्ध बंद करो, ये काल हमारे अनुकूल नहीं है, पहले जब काल हमारे अनुकूल था तो हम लोग इनको जीत लिए थे, देवताओं को भगवान के जो पक्षधर हैं उनको हम लोग जीत लिए थे, अब समय विपरीत आ गया है, अब युद्ध बंद करो, लड़ना ठीक नहीं है, किसी भी उपाय से काल को जीता नहीं जा सकता, किसी उपाय से, चाहे मंत्र से, चाहे किला बना करके, या राजनीति से, अनेक मंत्रियों की सहायता से इसको जीता नहीं जा सकता, युद्ध बंद करो, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं। तब युद्ध बंद कर दिए, लेकिन इतना पीटे गए थे, मारे गए थे कि सब पाताल भाग गए, ये स्वर्ग छोड़ करके खाली करके भाग गए। इसके पहले सब स्वर्ग में जमे हुए थे, उनकी जब पिटाई हुई धुनाई हुई तो सब भाग गए। एक बात मैं कहना चाहता था कि जब ये कह रहे थे कि हम हमारा धर्म है बामन को मार देना, इस कपटी को मार देना, इस तरह के विचार जो असुर होते हैं उनमें ही होता है, विचार में ही होता है कि आखिर हमारा स्वामी जिसकी पूजा कर रहा है, जिसके चरणों में सब कुछ दे रहा है, और उसको मार देना कैसे हमारे स्वामी की सेवा होगी, ये विचार नहीं किए। बामन देव को मारने चले तो ये तो बलि महाराज के कलेजा को ही मार रहे थे। इसी कारण से भगवान के पार्षदों ने पूरा वध कर दिया, कुछ ही लोग बचे। असुरों का विचार हमेशा गड़बड़ होता है, धर्म के नाम पर ये लोग युद्ध करना चाहते थे। धर्म वास्तव में केवल एक है, सनातन धर्म, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, ये सब मनगढ़ंत एक फेथ मात्र है कि यह धर्म वह धर्म, कोई धर्म नहीं है। धर्म है भगवान से प्रेम करना, लेकिन वो लोग भगवान को मारने में ही अपना धर्म मान रहे थे। इस देश में जब अंग्रेज थे तो उन्होंने देखा कि हिंदुओं की संख्या बहुत अपार है यहाँ भारत में, तो वे लोग एक नीति बनाए कि कैसे हिंदुओं को कम किया जाएगा। तो वे लोग नियम बनाए कि कोई व्यक्ति अपने मत को बदल सकता है, धर्म चेंज कर सकता है, और शासन था ही लालच दे करके पद का, धन का, और कई प्रकार से हिंदू धर्म की निंदा करके वे लोग ईसाई बनाना चालू किए। और छूट दिए कि कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो प्रायः हिंदू धर्म से केवल जाने का रास्ता था वन वे, पर आने का नहीं। पर भगवान की काल की कुछ ऐसी प्रेरणा है कि अब बोथ वे चालू हो गया, आने का भी चालू हुआ। तो जब आना चालू हुआ तो बहुत से राक्षस असुर इसके विरोध बोल गए हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो जो तुमने नियम बनाया था वही तो हो रहा है। अगर सनातन धर्म में लोग आ गए तो क्या गलती किए, और तुम्हारा ही बनाया हुआ नियम था, पर फिर भी असुर लोग जहाँ तहाँ भौंक रहे हैं कुत्ते की तरह, कोई बिहार से, कोई लखनऊ से, कोई कहीं से बोल रहा है, ये कैसे हो गया, ये उल्टा हो गया, यही रहा बोलता, उल्टा कैसे हो गया। तुमने नियम बनाया था कि धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, तो उल्टा कैसे हुआ? वही हुआ है जो तुमने नियम बनाया। अब तक कोई नहीं बोलता था, हजारों लोग मुसलमान हो जाएं या क्रिश्चियन हो जाएं, कोई नहीं बोलता था। लेकिन कुछ लोगों ने यह स्वीकार किया कि हम हिंदू रहेंगे, तब इस पर ऑब्जेक्शन हो रहा है। यही है असुर विचार है, ये जो असुर बोल रहे हैं बलि महाराज के अनुगामी बामन को मारो, तो असुरों का ऐसा ही विचार होता है। और वो धर्म कैसे हो सकता है? हमारे धर्म में गाय माता है, गाय जैसा उपयोगी पशु कोई नहीं है। वो पशु भर है लेकिन वास्तव में माँ है, उसका दूध, उसका गोबर, उसका मूत्र औषध के काम में आता है, भगवान की पूजा के काम में आता है। और उसी गाय को जो मार करके खा रहा है और कह रहा है कि हम धार्मिक हैं, उसको कैसे माना जाए कि धार्मिक है? कोई दिमाग नहीं है। उस गाय की हत्या करके और फिर चाहता है कि समाज सुखी रहे, हमारा देश आगे बढ़े, कैसे होगा? हो नहीं सकता। जो सिद्धांत है वेद शास्त्र का, भगवान का अनुभव, ऋषियों का अनुभव, वो तो मानना ही पड़ेगा। हमें अपने धर्म पर दृढ़ रहना है। धर्म वास्तव में केवल एक है, सनातन धर्म। धर्म कहते हैं भगवान से प्रेम करना। भगवान सनातन है, सदा से हैं और रहेंगे। जीव भी सनातन है, सदा से है और रहेगा। भगवान से प्रेम करना ये हमारा स्वभाव है। और भगवान यहाँ आए तो गाय चराए, गाय की सेवा किए, सबको सिखाए। भगवान गाय की सेवा किए हैं, गाय का वध नहीं किए। वध करने वाला व्यक्ति कैसे धार्मिक कहता है अपने को? कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यदि गाय की हत्या करता है तो वह धार्मिक कहलाने के योग्य है ही नहीं। वो तो पापी है, वो तो नरकगामी होगा। धर्म के कई अंग हैं, तो धर्म का मुख्य अंग है गोमाता, गाय। गाय की सेवा में ही धर्म है। और फिर भी गाय की हत्या करने वाले कहते हैं कि हम धार्मिक हैं। और पाप कर रहे हैं, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, ये किस धर्म की चीज़ है? किसी धर्म में नहीं। पर अपने को हिंदू कहने वाले लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, ये धर्म नहीं, ये धार्मिक नहीं है, ये पापी लोग हैं। केवल नाम भर है कि हम हिंदू हैं। हिंदू हो तो शराब नहीं पियो, जुआ मत खेलो, मांस मत खाओ। मांस खाना कभी भी सनातन धर्म में विधि नहीं है, कभी नहीं खाना चाहिए। मांस आता है जीवों से और जीव की हत्या करके मांस मिलता है, और जीव की हत्या करना पाप है। हिंदू नाम है तो अपने धर्म पर अडिग रहिए, कभी भूल करके भी मांस नहीं खाना। श्रील प्रभुपाद जी सारी दुनिया में इस बात को बताए, नो मीट ईटिंग पहला उनका नियम था, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, व्यभिचार नहीं, मद्यपान नहीं, मांस भक्षण नहीं, ये असली धर्म का अंग है। श्रील प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में सबको बताया और आज भी इस काम के भक्त सब जगह ये बातें बताते हैं। हमें मांस कभी नहीं खाना चाहिए, कभी पशु वध नहीं करना चाहिए, या मछली वध भी या मुर्गी वध भी, कोई वध नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं करनी। इस तरह से शुद्ध रह करके विवाह में बंध करके रहे व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट रहे और भगवान का नाम जपे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यही धर्म है। काली काले नाम धर्म संकीर्त अनुसार, तो इस धर्म में अडिग रहना चाहिए। भगवान सबको बुद्धि दें कि इस सनातन धर्म में अडिग टिके रहें और कम से कम इसको बढ़ा न सके तो इसमें से कमी न करें, कोई भूल करके भी दूसरे अपधर्म में अधर्म में न जाए। और सारी दुनिया में सब मांसाहारी हैं, सभी गाय का मांस खाते हैं, केवल सनातन धर्म में नहीं खाते हैं। सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और इसके अलावा जो कुछ जो भी है सभी मांसाहारी हैं, केवल हत्या करके जीवों का खाना, वो भी केवल अपने लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए, स्लॉटर हाउस, कसाई खाना चलाना, ये कितना बड़ा पाप हो रहा है। ये राजनेता लोग ये सब नहीं देखते हैं क्या? वे जानते ही नहीं, हमको ज्ञान ही नहीं है कि इस यह पाप है। मैं तो यहाँ भागवत कहने के लिए बैठा हूँ, कोई राजनीति का भाषण नहीं करना है, लेकिन ये प्रसंग आ गया वामन देव को मारने के लिए, वो असुर एकता बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। बलि महाराज के विचार से कितना भिन्न विचार था, उसी पर याद आ गई बात, में कुछ कह दिया। जय श्री प्रभुपाद।